नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही हैं। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रसभीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्वों की पूनी। नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रसभीनी। जब मोरी चदर बन घर आई, रंगरेस को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरे ने, के लालो लाल कर दीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रसभीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रसभीनी। ध्रुव प्रह्लाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि त्यो धर दीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रसभीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। शरीर की तुलना चादर से की गई है, और ये चादर कैसी है? रिफाइंड, झीनी। राम नाम रस भीनी, रा अधिक म, इसका एक अर्थ श्वास भी होता है। ये शरीर एक चदरिया है जिसमें आना और जाना चल रहा है श्वास का। चदरिया झीनी रे झीनी, राम राम रस भीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूनी, पांच तत्व का धागा है। और कौन सा चरखा प्रयोग किया गया है? अष्टकमल का। अष्टकमल क्या है? इसके कई अर्थ हो सकते हैं। मनुष्य चेतना में छिपी हुई आठ प्रकार की वासनाएं, टेंडेंसीज, या फिर कई लोग कहते हैं पांच तत्व, मन बुद्धि अहंकार। 9-10 मास बुनन को लागे। कितना मास लग गया? 9-10 मास। मूर्ख मैली कीनी। इसमें तीन प्रकार के व्यक्तित्वों की चर्चा है। पहले वो मूर्ख लोग जिन्होंने इस शरीर को मैला कर दिया। 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, जब मोरी चदर बन घर आई। दूसरा है कवि खुद, जब उसकी चादर घर आई, रंगरेस को दीनी, अपने सदगुरु को उसने सौंप दिया, जिसने क्या किया, ऐसा रंग रंगा रंगरे ने कि लालो लाल कर दीनी। उसकी जो चादर है उसने लाल ही लाल कर दिया, रंगरेज को दे दिया, रंगाने के लिए दे दिया, और रंगरेज ने ऐसा रंगा कि लाल ही लाल। लाली तेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। तो दूसरा व्यक्ति है लेखक कवि खुद, जिसकी चादर उसने रंगरेज को सौंप दी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो कि दो दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी। पहले जो है वो क्या कर रहे है, इस शरीर के साथ मैला करते जा रहे हैं इसको। और तीसरे प्रकार के कौन लोग हैं? ध्रुव प्रह्लाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ये जो लोग हैं, इन्होंने जो दी थी उसको और ही पवित्र कर दिया। परदास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि उत्त्यो धर दीनी। दूसरे नंबर के लोगों ने मैला करके दी, तीसरे नंबर के जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, उसे बहुत शुद्ध कर दिया, बहुत पवित्र कर दिया। जो कि त्यो धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कम से कम इनसे ये ठीक है, दो नंबर से एक नंबर, इन्होंने क्या किया, कम से कम उसको जो कि त्यो दे दी, जैसी मिली थी वैसी दे दी। पर यह भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। इतना आसान नहीं है नंबर एक से, नंबर एक वाले जिन्होंने मैला कर दी, नंबर दो वाले जो कि त्यो, और नंबर तीन वाले और शुद्ध कर दिया, चदरिया झीनी रे झीनी। हम कहां पर है? सदगुरु तो आया है, रंगरेस को दीनी, ऐसी रंग रंगा रंगरे ने कि लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। पुराने कपड़े को छोड़ने की दिल होती है, सुबह की साकार मुरली। तुम्हारी दिल होती है पुराने कपड़े को छोड़ने की, नया कपड़ा नए वस्त्र इंतजार कर रहे हैं, पर कम से कम इसे मैला तो नहीं करना है। अष्टकमल का चरखा बना या पांच तत्व की पूनी, नौ दस मास बुनने को लागे मूर्ख मैली कीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। कईयों ने इसका ये अर्थ भी लगाया है कि केवल यह शरीर की बात नहीं है, मन की बात चल रही है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, क्या करना है फिर, जो जितना पुरुषार्थ करे, काम बहुत बड़ा है। स्वच्छता अभियान है ये भर्ती, क्या है, स्वच्छता अभियान, हाउस क्लीनिंग, अंदर की सफाई और बाहर की सफाई, और समय कम है। एक व्यक्ति के पास एक गधा था और वो गधा बार बार बीमार पड़ता था, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी जुकाम। बहुत उपाय किए पर गधा ठीक नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार गधों के जो डॉक्टर थे, गधों के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल की गधे की और फिर कहा, बीमारी गंभीर है पर इलाज है मेरे पास। कुछ गोलियां दी और कहा, यह गोलियां बहुत गर्म है, हेवी, और एक नली दी, एक नली गले के मुंह में, गधे के मुंह में रखना और एक तुम्हारे मुंह में, और फूंक देना ताकि गोलियां सीधा गधे के पेट में जाए। शाम को व्यक्ति डंडा लेकर डॉक्टर के घर पे आया चिल्लाते हुए, ये तुमने क्या कर दिया, आधी बात बताई। डॉक्टर घबरा गया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या तुमने दवाई दे दी गधे को। उसने कहा, नली तो रखी थी पर गधे ने पहले फूंक दी। डॉक्टर ने कहा, तुम कर क्या रहे थे। वो कहते, मैं दूसरे ख्यालों में खो गया, बीच में नली रखी, दवाइयां रखी, दूसरे दूसरे विचार आ गए, मन भटकता है। आज कहा, मुरली में घोड़ा है, तेज है, इधर उधर के ख्याल, और जो काम करना है वो रह जाता है। इसलिए हर कर्म सतर्क होकर, होश में, बेहोशी आई कि घोड़ा अपना, गधा अपना काम कर देगा। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, हर कदम में तटस्थ, हर पग में तटस्थ, जागरण, होश, यही अध्यात्म है। अलर्टनेस, अटेंशन, छोटे छोटे कर्मों में भी सतत निरंतर होश, यही अध्यात्म है। रास्ता बहुत ज्यादा नाजुक है। तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, सुबह की साकार मूर्ति। तुम कहां खड़े हो, युद्ध के मैदान में। डरना नहीं है, हरकत ही दे देते, शादी कर लेते हैं, सतत जागरण, वॉचफुलनेस, अलर्टनेस, यही अध्यात्म है। प्रति पग प्रति पल, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो क्या बन रहा है? संस्कार, एक पैटर्न, एक हैबिट। और एक बार वो संस्कार बन गया, फिर वो जाता नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पुनरुक्ति अगर होती रहे तो उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है। अंग्रेजी में शब्द है हैबिट, HABIT। अगर H को निकाल दिया जाए फिर भी अबिट तो रहता ही है, थोड़ा तो रहेगा ही, अबिट थोड़ा। अगर A को भी निकाल दिया जाए फिर भी बिट तो रहता ही है। अगर B को भी निकाल दिया जाए फिर भी इट तो रहता ही है, छोड़ता नहीं है वो, थोड़ा तो रहता ही है। मुश्किल काम है, मेहनत है, आज कहाँ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है पर सहज भी है। आदत, हैबिट, संस्कार, कितनी मुरलियां है, संस्कार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन। पर होता है क्या? होता भी है, परंतु पुरानी यादें वापस आ जाती है, पुराने संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं और हरा देते हैं। ये युद्ध है, निरंतर का युद्ध। तुकामने आम्हा युद्धासा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। निरंतर युद्ध ही युद्ध है, जगत है और मन है, निरंतर युद्ध। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये मन ही है, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, वही द्वंद्व चल रहा है। मामका पांडवश्चैव, हे संजय मेरे और पांडु के पुत्र में क्या चल रहा है मुझे बताओ। वहीं पर प्रकट हो रहा है मोह, पक्षपात। मामका पांडवश्चैव, मेरे और उसके, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, बस यही खेल है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, राग द्वेष, राग द्वेष, ये वास्तव में दो ही विकार है। कहीं हम अटैच्ड है, कहीं से नफरत है, कहीं पर नफरत, कोई अच्छा नहीं लगता। सुखद है तो प्रिय लगता है, दुखद है तो द्वेष। पर जो कुछ हो रहा है वो क्या क्रिएट कर रहा है? अंदर ही अंदर संस्कार, और संस्कार बहुत पक्के होते। रमेश भाई ने एक अनुभव लिखा है, बताया है। वो किसी सेंटर पर गए और बाबा भी थे मुंबई में उस समय, अव्यक्त बाब, पदरामणी हुई, मुरली चली, तो एक माता बैठी थी, तो उसको पूछा बाबा ने, गीता का भगवान कौन? सारी क्लास को पूछा, सबने कहा शिव बाबा, शिव बाबा। उस माता ने कहा श्री कृष्ण। पुरानी माता थी, पुरानी मतलब जब से ज्ञान में थी, कुछ साल हो गए होंगे। तो बाबा ने कुछ नहीं कहा। फिर रमेश भाई उस माता के पास गए और उसको समझाने लगे। रमेश भाई चुप थोड़ी बैठेंगे। उसने कहा आप इतने सालों से ज्ञान में हो। वो कहते चाहे मैं कितने भी सालों से ज्ञान में हो पर मैं मानूंगी नहीं, मेरा बचपन से श्री कृष्ण ही भगवान है, और ये जो मुरली चल रही है, मुरली भी श्री कृष्ण ही चला रहे हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण ही है। फिर रमेश भाई वो सेंटर इंचार्ज बहन के पास गए, उसको कहा कि इसको समझाओ। बहन ने कहा मैं सब कुछ कर चुकी, ये नहीं मानती। रमेश भाई सीधा बाबा के पास गए, तो बाबा को कहा बाबा आप इसको बोलते क्यों नहीं, आप चुप कैसे रह गए? बाबा ने कहा इस तन में शिव बाबा आता है, और ये जो आत्मा है ये भविष्य में कृष्ण बनने वाली है, और बीच बीच में ब्रह्मा भी बोलता है, इसलिए जो माता ने कहा वो राइट है। पर रमेश भाई मानने को तैयार नहीं थे, ना ही स्वीकार किया और फिर चले गए। एक साल बाद फिर लौटे, फिर उस माता को ढूंढा, मिली, उसको पूछा गीता का भगवान कौन, तो वो कहती शिव बाबा। कहते कैसे, तुमने तो कहा था कुछ भी हो जाए। कहते पता नहीं कब हुआ, मुरली सुनते 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 कब ये परिवर्तन हो गया पता ही नहीं चला। रसरिया बत जात है, सिल पर पड़त निशान। संस्कार गहरे है, तगड़े है, चट्टान की तरह है, पर पानी झरनों का ऊपर से गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, और कब चीर देता है पत्थरों को पता नहीं चलता। इसलिए ज्ञान वो जल है, संस्कार बहुत कड़े हैं, आदतें गहरी है, पक्की है, हड्डी आदतें हैं। हमारा जो रूटीन बन गया है, हम उस रूटीन को बदलना नहीं चाहते, वैसा ही रहेगा। उसमें जो जो बातें हैं वही बातें रहेगी, चाहे किसका कितना भी सुन लो या कुछ कर लो। मन ने मान भी लिया है, परंतु हम रूटीन को बदलते नहीं है। परंतु ये यात्रा ही परिवर्तन की यात्रा है। नई आदतें, पुरानी आदतें समाप्त हो, नहीं आ जाए। तो आज की यात्रा में हम देखेंगे संस्कार, प्राणिक संस्कार। एक है आदत, एक है संस्कार, गहरा कौन है दोनों में और कहां पर है दोनों, चेतन मन में है या अवचेतन मन में। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड। आदतें कहां है और संस्कार कहां है, विचार कहां है, विचार है चेतन मन में, आ रहे है जा रहे है। भाव कहां है, यहां पर उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, बदलते रहते हैं, मूड बदलते रहता है, फीलिंग्स इमोशंस। आदतें कहां है, कॉन्शियस में है कि सब कॉन्शियस में। सब कॉन्शियस में, अगर आदतें सब कॉन्शियस में है तो संस्कार कहाँ, वो भी सब कॉन्शियस माइंड में ही है। परंतु सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी परतें हैं, सबसे नीचे जो है वो है संस्कार। आदतों से भी गहरी गहरे होते हैं संस्कार, आदत ही बहुत गहरे होती, गहरी होती है आदत, बहुत गहरी होती है, वो कॉन्शियस माइंड की नहीं है। इसलिए अपने आप काम करती है आदत। रोज हमें अपने डिपार्टमेंट से रूम पर जाने की आदत है। एक दिन सोचा था कि रूम पर नहीं जाएंगे, कहीं और जाना है, पर अपने आप कदम रूम की तरफ जाते हैं। क्यों? फिर वहां जाके पता याद आता है कि अरे वहां जाना था। वो आदत बन गई है, अपने आप काम करता है शरीर। उस तरह शरीर की भी आदतें हैं, सारा कंडीशनिंग है बस, और कुछ नहीं। व्यक्ति स्मोकिंग करता है 40 साल से, उसको कहो स्मोकिंग छोड़ो, वो कहते हैं स्मोकिंग छोड़ते ही कब्जी होती है और सिर दर्द होता है। मेडिकल की तरफ से ये व्यर्थ है ऐसी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिकल कहता है ये तो तुम्हारी कंडीशनिंग है बस, पर उसके लिए वो सत्य है, होगा असत्य में होगा, क्योंकि उसने वो दो चीजों को जोड़ दिया है, ये और ये दोनों को जोड़ा है। एक कनेक्शन, एक न्यूरल पाथवे तैयार हो चुकी है। तो हैबिट जो है, ये अवचेतन मन यदि है तो आदत ऊपरी तल पर है, पर है ऑटोमेटिक ही, है चेतन मन के नीचे, और संस्कार तो उससे भी नीचे है, कई सारी परतें हैं। ये यहां है संस्कार। सबसे पहले तो संस्कार परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये संस्कार है। पहले तो हम उसे स्वीकार ही नहीं करते। कोई किसी को कहो तुमको तो लत लग गई है चाय पीने की, वो कहते नहीं नहीं कभी कभी पी लेता हूँ, कभी मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। कोई स्वीकार ही नहीं करता कि ये एडिक्शन है। तो एडिक्शंस संस्कार, और एक शब्द है एडिक्शन। एक है आदत, एक है लत, एक है संस्कार। संस्कार डीपेस्ट है, उसके थोड़े ऊपर लत, ये भी बहुत स्ट्रांग होती है। इसको छूटने के लिए रिहैब केंद्र होते हैं, पुनर्वसन केंद्र। 6-6 मास तक लोग रुकते हैं, 6 मास तक रिश्तेदारों से कोई कांटेक्ट नहीं, 6 मास तक नो मोबाइल नथिंग, 6 मास तक सुबह से लेकर रात तक। कितने लोगों को हमने यहाँ से ही भेजा है, और कई लोगों की दारू ये नशा पता जो भी करते थे सब छूट गया, पर कई लोग 6 मास निकलने के बाद फिर चालू कर देते। इतना गहरा होता है एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, अफीम, गांजा, चरस सब। उसके लिए इतनी बड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है उनको, और हम काम कर रहे हैं किस पर? संस्कार। और कहाँ काम कर रहे हैं? इस संसार में रहते हुए जहां सारे प्रलोभन सामने हैं, और हम सोचते हैं ये काम हो जाएगा। कितना गहरा वैराग चाहिए तुम्हें, इस देह से भी वैराग हो सुबह की मुरली तो ही ये काम होगा। तो सबसे पहले तो ये समझो, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। तो पुरुषार्थ भी उतना ही होना चाहिए। और पुरुषार्थ करते करते दूसरे ख्यालों में चले गए तो गोली हमारे पेट में, गधे के पेट में नहीं। इस यात्रा में हमें कुछ संस्कार बनाने हैं, और संस्कार बनते कैसे हैं? बार बार करने से। संस्कार बनने के लिए लगते हैं 21 दिन, 21 डेज, और जीवन बनाने के लिए लगते हैं 90 दिन। कोई भी चीज अगर 21 दिन करो तो थोड़ा गहरा चला जाता है, वो आदत सी बन जाती है। हैबिट बनाने के लिए 21 डेज, और जीवन बनाने के लिए 3 मास। 3 मास यदि किसी एक प्रकार का भोजन किसी ने खाया, उसके बाद उसको वही अच्छा लगता है, फिर वो पुरानी भोजन पर कभी नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है, शरीर रिएक्ट करेगा। 3 मास तक कोई स्मोकिंग करता है, उसके बाद उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल है। पहले छोड़ सकता है पर बाद में बहुत मुश्किल। न्यूरल पाथवेज क्रिएट होती है, नए ट्रैक पगडंडियां बनती है ब्रेन में अपने आप, और वो काम अपने आप होने लगता है फिर। तो 21 डेज और 90 दिन, 21 दिनों पर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं लोगों ने। जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो नए कमरा, नया घर में एडजस्ट होने के लिए कितना दिन लगता है? 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, और मैक्सिमम 21 दिन। नए घर में जाने के बाद एडजस्ट होने को 21 दिन लगते हैं। डॉक्टर मैक्स मार्ट्स करके एक लेखक था, साइको साइबरनेटिक्स नाम की किताब है, 1960 में रिलीज हुई। उसमें वो जो लेखक था, पहले वो सर्जन था, फिर प्लास्टिक सर्जन बना, फिर साइकोलॉजिस्ट बना। तो उसने ये ऑब्जर्व किया, जो उसके पेशेंट थे डायबिटिक के पेशेंट, जिनका हाथ पैर सड़ जाता था, गैंग्रीन हो जाता था, पैर काटना पड़ता था, पैर काटने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरा पैर नहीं है, बेड से उठे और सीधा चलना चालू और धड़ाम से गिरे। फैंटम लिम इंग्लिश में कहते हैं उसको, मेडिकल में फैंटम लिम। पेशेंट को यह स्वीकार करने को 21 दिन लगते कि मेरा पैर नहीं है, अब मुझे बैसाखियों के सहारे चलना है, या तो फिर वो आर्टिफिशियल फूट लगाते हैं, जयपुर फूट वगैरह, पर तब तक वो मन स्वीकार नहीं करता उसका। उसी तरह उसी डॉक्टर ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो महिलाओं की प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है चेहरे की, वो नया चेहरा स्वीकार करने के लिए 21 दिन लगता है उनको। वो स्वीकार ही नहीं करते ये मैं हूं, क्योंकि बचपन से वो चेहरा देख रहे हैं आईने में, अभी प्लास्टिक सर्जरी हो गई तो वो चेहरा है। 21 डेज, इसलिए सीधा पर 21 डेज के लिए मैं ये करूंगा ये भी नहीं। पुरुषार्थ कहां से चालू करना है? 1 दिन का, आज। अगर 1 दिन सफल हो गए तो नेक्स्ट पुरुषार्थ है 3 दिन का, 3 दिन सफल हो गए तो नेक्स्ट पुरुषार्थ है 7 दिन का, और 7 दिन यदि सफल हो गए तो यहां तक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पावर आ जाती है, फिर 21 दिन के बाद ही अब मैं रुकूंगा। तो 21 डेज का पुरुषार्थ, चाहे समान का अभ्यास हो, चाहे भोजन का परिवर्तन हो, चाहे दिनचर्या का परिवर्तन हो, या अपनी दिनचर्या में कोई नई बात का समावेश करना है 21 दिन, पर शुरुआत किससे करना है, सीधा 21 दिन तक मैं ये करूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, ये भी ठीक है, पर एक दिन, और एक दिन में भी जैसे उस दिन कहानी सुनाई थी, 9 बज गए अब तक सब ठीक है, 12 बजे अब तक सब ठीक है, 4 बज गए अब तक सब ठीक है, अब तक सब ठीक है करते करते रात हो जाएगी सफल विजयी। धीरे धीरे करना है, कोई भी पुरुषार्थ कुछ भी हो भी, क्योंकि आदत गहरी है, और मनुष्य चेतना में दो ही आदतें हैं जो सबसे गहरी है, काम विकार, काम कटारी और अन्न कटारी। इनका परिवर्तन अर्थात संपूर्णता, इनसे मुक्ति अर्थात संपूर्णता। तो आज हम ऐसे 7 संस्कारों की चर्चा करेंगे जो प्राणिक पथिक में होने चाहिए, जो प्राणिक राही में होने चाहिए, क्योंकि ये यात्रा हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है, ये किसी विशिष्ट रोग से मुक्ति की यात्रा नहीं है, ना वजन घटाने की या वजन बढ़ाने की यात्रा नहीं है, दवाइयों से मुक्त होने की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है चेतना के उत्थान की, ये यात्रा है चेतना के आरोहण की, एसेंशन ऑफ स्पिरिट, हायर कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहला संस्कार जो हमें धारण करना है वो है अहिंसा, पहला संस्कार अहिंसा। व्रत लेते हैं ना 3 शिवरात्रि में, पहला, दूसरा और तीसरा था किसी को भी दुख या धोखा न देना, किसी को भी दुख देना अर्थात हिंसा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते पता चलता है कि बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे, खा रहे, पी रहे, उसमें हिंसा समाई हुई है, और बहुत हाई लेवल पर हिंसा है उसमें, और हमें पता ही नहीं कि उसमें हिंसा भी है, इसलिए मन स्थिर नहीं है, मन भारी रहता है। पृथ्वी से भी भारी क्या है? नहीं, पृथ्वी से भी भारी क्या है? उत्तर क्या है? चाणक्य नीति, पाप और ग्लानी का भाव, आत्मग्लानी, आत्मग्लानी का जाओ, मेरे से पाप हो रहा है, दिल खा रहा है पर छूट नहीं पा रहे, गिल्ट कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहला है हिंसा। इस यात्रा में जितना जितना आगे बढ़ेंगे हमारा मन सूक्ष्म होते जाएगा, और हम अपने आप को जितना हो सके उतना हिंसा से धीरे धीरे मुक्त करते जाएंगे, और सबसे बड़ी हिंसा है अनाज। आग के आविष्कार के पहले अनाज खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अनाज का सारा खेल आग के पकने पर निर्भर है। समय व्यतीत होने के साथ साथ मनुष्य आग में भोजन पकाने की कला को विकसित करते चला गया। आज कच्चा अनाज खाने की तो मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। कुदरत ने कोई आहार कभी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रखा। जिस तरह संसार में सभी प्राणियों के लिए उसने पका पकाया तैयार भोजन दिया है, उसी तरह हमारे लिए भी उसने फल, मेवे, पके पकाए दिए हैं। अनाज के उपयोग की लालसा ने मनुष्य को हमेशा के लिए पोषक तत्व नष्ट करने वाली प्राणघातक आग से नाता जुड़ा दिया। बस यही से मानव ने नींव रख दी अपने दुर्भाग्य की और रोग की। बस तभी से यह रोग की कहानी बन गई। मानव अपने मूल आहार से भटक गया। अनाज की अधिक आवश्यकता और दैनिक आवश्यकता ने उसे खेती करने पर मजबूर कर दिया। खेती, उगते हुए सूरज के सामने 2 बैलों को जोतकर हाथ में हाथ लेकर नंगे बदन उषा काल में मेहनत करते रहे कर रहा किसान की प्रतिमा को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता उठती है, परंतु हमें उनमें मानव का दुर्भाग्य और सजा नजर नहीं आती। यही से आफत आ गई बेचारे स्वतंत्र निर्दोष बैलों पर। ना सिर्फ बैलों पर बल्कि ऊंट, गधे, घोड़े, गायों पर भी, क्योंकि मानव अकेला भाड़ कभी नहीं झोंकता। अपनी सजा में उसने इन भोले भाले निर्दोष प्राणियों को भी कैदी बना लिया है। यही से शुरुआत हुई मानव के पशु अत्याचार की कहानी। जो जो हम कर रहे हैं, अगर उसमें हिंसा समाई है, वो हिंसा हमें प्रभावित करेगी। निर्दोष पशुजात और विशेषकर बेचारे बैल उस घड़ी को बद्दुआ दे रहे होंगे जिस घड़ी मनुष्य ने जले भुने अनाज के दाने खाने चख लिए। इस निर्दोष पशु समाज की मानव ने खूब मिट्टी पलीत की, खूब निचोड़ा। अनाज का सहारा बनाकर मानव ने स्वार्थ और अत्याचार का दर्जा पशु जात से भी अधिक नीचे कर दिया। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान ने जितने खेती की आधुनिक मशीनें ईजाद कर ली, फिर भी अनाज को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए ऐसी 10 बातें हैं जो होनी होती है। बीजारोपण, बैल, हल, जुताई, सिंचाई, कटाई, धुनाई, सफाई, पिसाई, कुटाई, पकाई, पकाना और फिर मसालों के माध्यम से खाना। आपने देखा कितने ढोल बजाने पड़ते हैं, कितने गीत पड़ते हैं, सब तब जाकर मिलता है रोगकारक पशुओं का दाना, घास का बीज, गैर मानव आहार अनाज। खेती का आदमी से कोई नाता ही नहीं, वह तो फलों के बगान का मालिक है। इस बगीचे की केवल उसे सुरक्षा करनी होती है, बीज बोकर बस इंतजार करना होता है। बगीचे का मालिक जुट गया खेतों में मजदूर की तरह, दुर्भाग्य का पसीना बहाता हुआ। खेती कुदरत का निर्देश नहीं, मानव दिमाग की खुजलाहट है। मधुर, स्वादिष्ट, सुगंधित, ताजे, फलदायी फल मेवे का भोग छोड़कर रूखे, कड़े, निर्गंध, स्वादविहीन, मामूली मिठास वाले अनाज के साथ अनावश्यक आदमी जुड़ गया और गिर गया रोगों की खाइयों में। अनाज अपनाकर स्वास्थ्य का नाश तो मानव ने कर ही दिया, साथ ही साथ इससे भी गंभीर खतरा और असंतुलित उसने पर्यावरण के लिए पैदा कर दिया है। खेतों के लिए वृक्षों को काटकर अधिक से अधिक जमीन को सपाट कर पर्यावरण का दुश्मन बन गया। नदियों को मोड़ा जाता है, खेतों को, जंगलों को काटा जाता है, जीव जंतु पशु पक्षियों की हत्या की जाती है, तब जाकर खेती होती है। समतल को करते हैं खेतों को, तब जाकर फिर अनाज। और हमारा भोजन क्या है? फल और मेवे। जो हम खा रहे हैं उसको देखना है, उसमें कहीं हिंसा तो समाई हुई नहीं है। और उस दिन हमने 10 प्रकार के अन्न दोष देखे। कौन से निखिलेश भाई? 10 प्रकार के अन्न दोष। पहला, 10 प्रकार के अन्न दोष। क्लास आगे बढ़ रही है, पीछे का भूलना नहीं है। 10 प्रकार के अन्न दोष। पहला, पैसा कहाँ से आया? दूसरा, समय, किस समय बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, खा जा रहा है। तीसरा, स्थान। चौथा, पकाने वाले की मनोदशा। अगला, खाने वाले की मनोदशा। अगला, जाति दोष, उस भोजन में क्या दोष है। अगला, भोजन तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। अगला, भोजन की तासीर क्या है, पका हुआ है, कुक्ड है, अनकुक्ड है, वीगन है, अनवीगन है, नॉन वीगन है, पशुओं से आया हुआ है कि रहित है। और और जो खाने वाला है वो प्राणिक यात्रा पर है या नहीं है। ऐसी 10 बातें हैं अन्न दोष की। तो सबसे पहला है अहिंसा। ये केवल खाने की ही बात नहीं है, दिनचर्या में भी जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसमें घृणा है, नफरत है, तो वो हिंसा है। काम का आवेश है तो वो हिंसा है, क्रोध है तो हिंसा है, कोई भी विकार है तो वो हिंसा है। विकार अर्थात हिंसा, वायलेंस। काम कटारी सबसे बड़ी हिंसा है और अन्न कटारी भी हिंसा है। यदि हम उन पशु पक्षियों को दुख देकर उनका भोजन छीन कर हम खा रहे तो वो हिंसा है। दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें, सब में हिंसा समाई हुई है। इसलिए अनाज, मांसाहार और दूध, ये तीन चीज मनुष्यों का आहार नहीं है। मांसाहार, दूध और अनाज, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए बना ही नहीं है। और ये हमने लिया इसलिए सबसे ज्यादा बीमार है मनुष्य, पशु इतने बीमार नहीं है, वो वही खाते हैं जो उनके लिए है। हम पराई माँ का भोजन खा रहे, पराई माँ का दूध ले रहे जो हमारे लिए है ही नहीं। इसमें हिंसा समाई हुई है। प्राणी की यात्रा में यात्री का मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अब वो डिटेक्ट करने लगता है छोटी सी छोटी चीज़ों में वाइब्रेशंस को। जैसे नॉनवेज हमने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा नॉनवेज? क्योंकि वाइब्रेशन से उसमें एनिमल वाइब्रेशन है। वो एनिमल, वो पशु, वो देखा है आपने गाड़ी मुर्गियों की जाली होती है और वो उसको लेके जा रहे, गाड़ी होती है पीछे जाली होती है उसमें मुर्गियां है, कहाँ जा रही है अब? कटने के लिए। और कितना दुख होता है उसको जब उसे काटा जाता है, वो दुख के प्रकंपन उस भोजन में प्रवेश करते हैं और जो वो खाएगा उसमें वही हिंसात्मक वृत्ति जन्म लेगी। आइंस्टीनियन वेव्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आइंस्टीनियन वेव्स कहा गया है जहां पर कत्तल खाने ज्यादा होते हैं वहां पर भूकंप की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जहां पर बूचर हाउस ज्यादा होते हैं, काटे जाते हैं मांस, क्योंकि वो जानवरों की पीड़ा दर्द पृथ्वी ग्रहण करती है। वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी आइंस्टीनियन वेव्स कहते हैं, वहां पर आइंस्टीनियन अर्थक्वेक्स ज्यादा होता है। तो जो जो चीज में हिंसा है उससे हमें मुक्त होना है। देवता अर्थात संपूर्ण हिंसक, इसलिए देवता है या तो ब्रदरियन लेवल 4 है या तो क्या लेते हैं फल जूसेस, और वो मुरली चली मुंह लगाया और जूस आ गया, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनका शरीर इतना शुद्ध है, वो भी एक हैबिट ही है। अभी हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब कंडीशनिंग है। न्यूट्रिशन इज अ कंडीशनिंग, फूड इज अ कंडीशनिंग। ये मुझे इस समय चाहिए, ये अगर नहीं खाता हूं तो कमजोरी आती है, खालीपन होता है, चक्कर आते हैं और बेचैनी होती है, थकान लगती है, ये कंडीशनिंग है तुम्हारी, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहला है हिंसा, दूसरा संस्कार जो हमें अपने अंदर धारण करना है प्राणी की यात्री को, वो है बी इन द कंपनी ऑफ नेचर। जितना हो सके प्रकृति के सानिध्य में जाओ, जितना हो सके जब समय मिले एकांत में चले जाओ, छत पे जाओ, बगीचे में जाओ, पहाड़ों पर जाओ, नदियों के पास जाओ, जहां प्राण ऊर्जा खेल रही है। हमें अपने भीतर प्राण ऊर्जा बढ़ानी है, जितनी अधिक प्राण ऊर्जा बीमारी जीरो, जितनी कम प्राण ऊर्जा उतनी बीमारियां। और जरूरी नहीं हर बीमारी का कोई नाम, कोई लेबल, कोई डिसीज हो, बस दर्द होते रहता है, क्यों होते रहता है पता नहीं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है पर शरीर ठीक नहीं है, थकान रहती है, सोने की इच्छा होती है। हजारों लोगों को दिखा दिया कोई ठीक नहीं कर पा रहा, ये अवस्था है। क्यों? क्योंकि प्राण ऊर्जा की कमी है। जवान जवान लोग एक ही कंप्लेंट लेके आते हैं, थकान थकान थकान, एनर्जी लेवल डाउन है। तो दूसरा है प्रकृति का सानिध्य, नेचर, प्रकृति से प्यार। और इसलिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है। कोई लोग कहते हैं हम तो शहरों में रहते, भीड़ भाड़ में रहते, तो इस यात्रा में आगे बढ़ना है तो उस शहर को छोड़ना पड़ेगा। फिर हमारे देश में ऐसा नहीं है तो देश में ऐसा नहीं है, उस देश को छोड़ना पड़ेगा। फिर छोड़ा भी है कई लोगों ने, पूरा जीवन बदल दिया, उनको एक्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि प्राणी की यात्रा में अगर आगे बढ़ना है और भीड़ भाड़ के अंदर बीच में रह रहे हो तो थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म की। और वहां रह रहे वो भी, उसका भी बहुत सारे कारण है, ग्रीड है, पैसे ज्यादा मिलते हैं वहां। ये यात्रा तो आगे की यात्रा है, तो धीरे धीरे अपने एकांत का समय निकालना है, मौन का समय निकालना है। प्राणी की यात्रा में अगर आगे बढ़ना है तो प्राण ऊर्जा जहां सबसे ज्यादा है ऐसे स्थानों पर रहना पड़ेगा, पहाड़ों में। वो अल्पकाल के लिए, वो तो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, जहां पर पोल्यूशन है ऐसी जगह पर, क्योंकि इस यात्रा में ऐसी जगह जाओगे तो अपने आप भूख बढ़ेगी, जहाँ प्राण ऊर्जा कम होती है वहाँ भूख बढ़ जाती है, बहुत खाने की इच्छा होती है। लोग कहते हैं ना, सुबह नाश्ता करते, दोपहर का भोजन करते, 5 बजे इतनी भूख लग जाती है क्या करूँ समझ नहीं आता, 2-2 घंटे में भूख लगती है। और जितना ज़्यादा खाएंगे उतना प्राण ऊर्जा कम, क्योंकि फूड ब्लॉक्स द प्राणा। प्राण ऊर्जा तो तभी बहेगी जब शरीर भोजन से खाली होगा, भारी करेगा मन को, खाते ही कुछ कुछ होना चालू हो जाता है। भोजन शरीर को कुछ करता है, शरीर भोजन के साथ कुछ करता है, और एक भोजन जो शरीर में है वो दूसरे भोजन के साथ कुछ करता है। ये 3 चीजें होती है। जैसे दवाई हम लेते हैं, शरीर में डालते हैं, पैरासीटामोल की, ग्डोलो की गोली ली, क्रोसिन, बुखार आया, गोली डाली, वो गोली शरीर के साथ कुछ करेगा, शरीर उस गोली के साथ कुछ करेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। और एक गोली जो पहले से उधर डाली हुई है वो दूसरी गोली के साथ कुछ करेगा, ड्रग टू ड्रग इंटरैक्शन। इसलिए जब गोली आपके, बहुत सारी गोलियां ली जाती है, तब व्यक्ति एक दूसरे ही जगत में होता है, वो गोलियों का प्रभाव होता है पूरे शरीर पर। नींद की एक गोली खा लो फिर देखो सारे दिन भर क्या होता है। रात में नींद तो अच्छी आ गई पर सारे दिन भर एक हल्का सा भारीपन है कोई ना कोई, क्योंकि हम पराए आहार पर है, वो तो फिर भी गोली, हम तो यहाँ भोजन। उसी सेम प्रिंसिपल भोजन का भी है, कुछ भी खाया, अभी कचौड़ी खाई, समोसा खाया, हमारे लिए सिंपल सी बात है, पर वो शरीर के साथ कुछ करेगा, शरीर उसके साथ कुछ करेगा, और वो जो पहले से वहां पर पुलाव खाया था वो उसके साथ कुछ करेगा। धर्म युद्ध चालू होगा अंदर, वो कहेगा ये तुमने क्या डाल दिया, अभी मैं पचा ही नहीं, पुराने पैसेंजर गाड़ी से, बस से निकले, नए पैसेंजर घुस रहे, अभी नाश्ता पचा ही नहीं, तो भोजन दोपहर का आ गया। अनाज की होगा ना होगा, अनाज के लिए ये सब चीजें कौन करेगा, नारायण या लक्ष्मी, अभी जो बातें गिनाई ना, कौन करेगा पहले ये बताओ। अनाज होने दो, बहुत सब होगा, पर अनाज के लिए खेती चाहिए, अनाज के लिए साफ करना पड़ता है, अनाज के लिए नदियों का प्रभाव मोड़ना पड़ता है, ये कटाई, सफाई, फिर धुनाई, पिसवाई, सिंचाई, बैल, बीजारोपण, कौन करेगा, नारायण या लक्ष्मी या उनके रॉयल परिवार या फिर प्रजा, ये सब कौन करेगा। खेती चालू हुई, एग्रीकल्चर का इतिहास स्टडी करो, द्वापर से खेती का क्या रोल है सतयुग में, सतयुग में बगीचे हैं, फलों के बगीचे का मालिक खेतों का गुलाम बन गया, यही तो दुविधा है। हम खेतों के मालिक है, कहां मालिक और कहां गुलाम। फल होंगे वहां पर, फल वो हमारा आहार है, फल और मेवे, सन कुक्ड, सोलर कुक्ड वहां, ये सब तो ये। चीनी का इतिहास स्टडी करो, शुगर हिस्ट्री, सॉल्ट का इतिहास स्टडी करो, खेती का इतिहास स्टडी करो, ये सब द्वापर का है, द्वापर की खुजलाहट है, द्वापर से सब चालू हुआ है, और वहां पे हिंसा समाई हुई है। सतयुग में देवता अहिंसक है, वो कैसे किसी को दुख दे सकते हैं, जमीन को भी दुख नहीं देंगे, वो तो प्रकृति सतो प्रधान है, क्या हल चलाएंगे वहां पर या ट्रैक्टर। There is no question of agriculture in golden age and silver age. भोजन की सबसे पहले शुद्ध शरीर को आवश्यकता ही नहीं होती है, वो खा इसलिए रहे, आवश्यकता इसलिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए, वो ब्रदरियन लेवल 4 है, खा रहे क्योंकि एंजॉय है, एंजॉय करना है, क्या करेंगे, काम नहीं है वहां कुछ दूसरे, इसलिए चलो पार्टी करो, पर इसलिए नहीं कि ये अच्छा लगा, ये ज्यादा खाता हूं, ये नहीं। नारायण को खीर पसंद है तो लक्ष्मी सोचती है आज मैं उसके पसंद की खीर बनाऊं, ये नहीं है वहां। फूड की एंट्री हुई और विकारों की शुरुआत, द टेस्ट ऑफ फूड एंड फॉल ऑफ मैन, द टेस्ट ऑफ सेक्स एंड फॉल ऑफ मैन, ये दो ही है जिसने व्यक्ति को गिराया है द्वापर से। तो सबसे पहला बताया अहिंसा, दूसरा बताया प्रकृति के सानिध्य में रहना, पंछियों की आवाज सुनो, पहाड़ों पर घूमो, चलो फिरो, बैठो, सो जाओ, उस दिन जो 10 बातें बताई, 10 प्रकार के भोजन, पिकनिक करो उसके साथ। और कब करना है, बीच बीच में जब भी टाइम मिले, अपनी सेवा में समय है, आधा घंटा भी कर लिया तो बहुत है, छत पे चले जाओ, प्राण ऊर्जा को ग्रहण करो भीतर, मैं प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वी आर सेल्फ चार्जिंग बैटरीज, प्राण की भी आवश्यकता नहीं है, वो भी बाहर है एक्चुअली। आत्मा का शरीर में होना ही शरीर के लिए पर्याप्त है, शरीर का पोषण केवल आत्मा के होने से हो सकता है, क्योंकि मुझ आत्मा से ही सारा भोजन शरीर को जा रहा है, ये पावर है। इसलिए तो एक योगी को 6 मास जमीन के भीतर गाड़ दिया गया, 6 मास के बाद उसका पूरा पेपर कटिंग से लेकर सब कुछ है निकाला गया, तो वो जिंदा था, हजारों की भीड़ उसके स्वागत के लिए। अब नीचे हवा नहीं है, सूरज की किरणें नहीं है, पानी नहीं है, जिंदा कैसे रहा? ऐसे कितने उदाहरण है। आत्मा की पावर से, आत्मा का शरीर में होना ही पर्याप्त है शरीर को चलाने के, परंतु ये स्टेज एक दिन नहीं आएगी, धीरे धीरे धीरे। पहले तो हमको यात्रा कुक्ड पे अटैच्ड है, ये यात्रा बहुत स्लो है, पहले कुक्ड से रॉ की तरफ जब तक नहीं आएंगे यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। और एक जगह पर स्थिर रहना है कम से कम 6 मास, इसमें कोई मेथड ही नहीं है कि फास्ट हो जाए। कोई कहते कि मैं फास्ट सीधा लिक्विड्स पर आ जाऊं, जूसेस पर, इम्पॉसिबल, कोई शॉर्टकट इसमें हो ही नहीं सकता। कम से कम 6 मास, 1 साल या 2-3 साल अपक्व आहार पर रहो, उसके बाद ही आगे की स्टेज है फ्रूटेरियन, फलों पर, ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज है लिक्विडेरियन, जूसेस, और जूसेस में भी 3 प्रकार, थिक वाले जूस, थिन वाले जूस, मीडियम वाले और फिर थिन वाले। और फिर धीरे 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 एक स्टेज आती है कि इसके आगे क्या है। एक व्यक्ति है विम नाम का, उसने, वो पहले बॉडी बिल्डर था, इतना नॉनवेज खाता था, सब कुछ खाता था, बहुत अच्छा इंटरव्यू है उसका, देख सकते हैं, वो सब कुछ करता था। और फिर धीरे धीरे उसको पता चला, लेट मी एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, तो उसने नॉनवेज छोड़ दिया, वेज पर आ गया। बॉडी बिल्डिंग करता था इसलिए ज़्यादा खाता था। फिर धीरे धीरे उसने सोचा चलो रॉ ट्राई करता हूँ, रॉ वीगन पर रहा कुछ समय, कुछ साल, उसके बाद में फिर फ्रूट्स पर रहा, उसके बाद में केवल जूसेस पर रहा, उसके बाद में लगा उसको ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर वाटर पे आ गया, फिर उसके बाद में वो भी छोड़ दिया। अभी उसकी ये स्थिति है कि उसे ना खाने की ना पीने की किसी की जरूरत नहीं है, वो सोता है रात को 2:30 बजे, उठता है 4 बजे, बस 90 मिनट की उसकी नींद है, सारे दिन भर फ्री है, ही डजंट नीड एनीथिंग। विम, वो अपने आप को उसने नया नाम दिया, ब्राह्मण, भारतीय नाम दे दिया, विम नाम है उसका, और बड़ा ही सिंपल है, निर्विकार चेतना है जैसी, कोई कपट, कोई छल, कोई अहंकार, कुछ भी नहीं। और बाबा ने ये बहुत अच्छा किया कि ये सारी बातें मुरली में नहीं बताई, अगर ये बताई होती और कही होती, क्योंकि भोजन का तुरंत व्यक्ति अहंकार कर लेता है। अभी इतना है कि हम बाहर का नहीं खाते, हमारी भोजन की 3-4 धारणा है, हम बाहर का अपवित्र पतित के हाथ का नहीं खाते, तो कितना अहंकार है हम में। दूसरा, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, भोग लगा के खाते, याद में खाते, ये 3-4 बातें मुरलियों में आई है, इसके आगे की नहीं आई है। हाँ आई है, पर इनडायरेक्टली आई है, जैसे योगी 3-4 दिन भूखा रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मस्ती में बाप की याद में रहते, बाबा के महावाक्य। दूसरा, देवताओं का भोजन होता है थोड़ा कम सूक्ष्म एक रस, वैसा तुम्हारा होना चाहिए, ऐसा बोल दिया, पर ऐसा थोड़ी ना कोई याद रखता है। इतना कहा, ये भी ठीक ही कहा, भगवान जो करता है ड्रामा बहुत परफेक्ट है, ये कह दिया होता तो सारे अहंकारी हो गए होते हम लोग, कि हम लोग ये खाने वाले लोग हैं, हम न खाने वाले लोग, ये खराब लोग है, ऐसा हो गया होता। इट इज गुड कि उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया रॉ का मुरलियों में, नहीं तो लोग एक ही प्रश्न पूछते, मुरलियों में तो नहीं आया, तुम कहां से बता रहे हो? उसमें आया है पर इनडायरेक्ट आया, डायरेक्ट नहीं आया है, डायरेक्ट ऐसी सेलिब्रेटेड श्रीमद जिसको कहते हैं ना, वैसा नहीं है। हमको श्रीमद क्या पता है, ये बाहर के हाथ का नहीं खाने का, प्याज लहसुन नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना है, याद में खाओ, ये 4 चीजें हैं। इसलिए ये भी है, यहाँ पर लोग ज्ञान में आए ही किस लिए है, स्वाद की वजह से, वो गुरुवार के भोग ने कितने को ज्ञान में लाया है। अगर गुरुवार का भोग फल सलाद और जूस कोई आता नहीं इसमें, इसलिए भगवान चतुर सुजान है राजू रमजबाज, बहुत उसको पता है, इनके दिलों की यात्रा इनके पेट से चालू होती है, और ज्ञान इतना बड़ा है, मिशन इतना बड़ा है उसका, वो भोजन जैसी छोटी सी चीज के लिए अपने मिशन को रोक नहीं सकता है, इसके लिए उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, पर जहां उसने इशारा देना था साकार अव्यक्त में दे दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। थोड़ा थोड़ा करके दे दिया, और जिस जिन्होंने पकड़ना था उन्होंने पकड़ भी लिया, जिन्होंने नहीं पकड़ना था नहीं पकड़ा। पर उसमें भी 15-15 दिन की भट्टियां कराई, 15 दिन छाछ पर रखा है, फिर वो सब किया है, बहुत सारी चीजें तो ऐसी की है जिसका कहीं लिखित वर्णन नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है, पर सब कुछ कराया है, सब कुछ। और ब्रह्मा खुद ही उसका उदाहरण है सबसे बड़ा। वैसी एकरस स्थिति बिना एकरस भोजन के आ ही नहीं सकती, जिसको ये जो है ना क्या कहते हैं उसको, जबान का चटोरापन, वो योगी नहीं बन सकता कभी, स्वाद ग्लटन। तो ये यात्रा है हमारी, तो क्या बताया, प्रकृति के समीप। तीसरा चयन, कौन सा आदत डालनी है, चयन करने की आदत, चूज करने की आदत। जैसे दो चीजें रखी हुई है, एक अंकुरित रखा हुआ है और रोटी सब्जी रखी हुई है, तो हमें डिसाइड करना है मुझे दोनों में से क्या लेना है। ये यात्रा में टोटल डिसीजन है, यथार्थ निर्णय करना है। आज सुबह का वरदान स्लोगन, साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ और फिर निर्णय लो। यथार्थ निर्णय का तख्त ही है कौन सा, साक्षी स्थिति। ये खाऊ तो क्या होगा, ये खाऊ तो क्या होगा, ये सोचू तो क्या होगा, ये सोचू तो क्या होगा, करना है नहीं करना है, बोलना है नहीं बोलना है, सारा जीवन ही निर्णय है। सार क्या है, यथा असार क्या है, नित्य क्या अनित्य क्या, सत्य क्या असत्य क्या, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इंटरनेट खोल दिया देखू क्या क्या नहीं देखू, ये निर्णय है, उस पर डिपेंड करेगा भाव और कर्म। मोबाइल से पढ़ू या हार्ड कॉपी पढ़ू, निर्णय निर्णय है पूरा। भीड़ भाड़ में जाऊं, प्रकृति में जाऊं, वॉक के लिए जाने, अकेले जाऊं या चार लोगों के साथ जाऊं, चार लोगों के साथ जाऊं मतलब कोई फायदा नहीं क्योंकि बातें चलेगी। अकेले जाके आया, घूम कर आया, अपने आप से बातें की, बाबा से बातें की, प्राण ऊर्जा भरी अपने अंदर, कितनी सारी चीजें हो गई। और दूसरों के साथ गए, बाह्य मुक्ता हुई, वेस्ट हो गया टाइम। अब ये डिसीजन हमारा है, हमें करना क्या है। तो प्राणी की यात्रा में कौन सा संस्कार डालना है, चयन करने का, चूज करने का। सारे दिन भर में व्यर्थ की बातें सुनू, शैतानी बातें, कल था ना, ये मेरा डिसीजन है, सो जाऊं या ना सो जाऊं, क्या करूं। अगला है डिसाइड, मुझे डिसाइड करना है। अब क्या डिसाइड करना है, बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी है। इसका आधा भाग कर लेंगे, आज डिसाइड का ले लेते हैं। ये 10 चीजें हैं जिससे मुझे छूटना है, छूटू कि नहीं छूटू, अब ये मेरे ऊपर है, ये मुझे डिसीजन लेना है। सबसे पहला अविद्या, अज्ञान, क्या यही अज्ञान चालू रखूं या इससे छूटना भी है मुझे। दूसरा है विकार, ये विकार कब से मुझे परेशान कर रहे हैं, इनसे छूटू या नहीं छूटू। तीसरा है विकर्म, ये विकर्म हो गए क्या करूं, इनका डिसीजन अब लेना है मुझे, या इनको होते होने दूं या कुछ करूं। अगला है व्यर्थ, अगला है नेगेटिविटी, अगला है दुख, अगला है चिंता, फिर है भय। ये सब चीजों से मुझे छूटना है कि इनको ऐसे ही चालू रखना है, अभी डिसीजन लेना है मुझे जीवन का। प्राणी की यात्रा में हमें सभी भय से मुक्त होना है, ये नहीं खाऊंगा तो मुझे वो हो जाएगा, कितने सारे मन में मान्यताएं बनाए रखी है, ये नहीं करूंगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं खाता तो मुझे वो होता है, सारा मन का खेल है, सब मन का खेल है। हमें किसी चीज की आवश्यकता, किसी भी अनाज की आवश्यकता नहीं, अगर देखा जाए तो रादर फूड की आवश्यकता नहीं है आइडियली तो, पर वो कंडीशनिंग हो गया, एडिक्शन हो गया है हमारा, इसलिए धीरे 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 स्वयं को मुक्त करते जाना है। तो सबसे पहला बताया अविद्या, अविद्या अर्थात अंधकार, अंधकार अर्थात अज्ञान। दूसरा विकार, विकार से छूटना है क्या उनको वैसे, और विकारों का कनेक्शन सीधा भोजन से है। भोजन हमारी आत्मा को ढक देता है, भोजन को हटाओ तब आत्मा दिखाई देती है। तीसरा विकर्म, चौथा व्यर्थ, पांचवा निगेटिविटी, छठवा दुख, सातवा चिंता या भय, अगला पुरानी संस्कार, पुराने संस्कार, और लास्ट पुरानी दर्दनाक यादें, बचपन की यादें अभी तक है, किसी ने अपमान किया है वो भूला कहाँ है, वो भूलेगा तभी जब भोजन परिवर्तन होगा। भूलेगा तभी संस्कार परिवर्तन अर्थात भोजन परिवर्तन। अगर कोई संस्कार परिवर्तन की चर्चा करते हैं और भोजन की उसमें कोई चर्चा नहीं आती है तो वो केवल और केवल बुद्धि विलास और वाणी विलास है। अगर तीव्र पुरुषार्थ की क्लास हो रही है या चर्चा हो रही है और उसमें भोजन की कोई चर्चा नहीं है तो वो केवल वाणी विलास है। वो जो वक्ता है उसका समय सफल हो रहा है, वक्ता है उसका अपना चिंतन हो रहा है, उसकी अपनी उन्नति हो रही है, सुनने वालों के लिए केवल भक्ति मार्ग है, बस रस है बस वाणी में। और जो उदाहरण दिए गए, कहानियां सुनाई गई, अच्छे अच्छे जोक सुनाए गए या कोई उदाहरण दिए गए, वो केवल वाणी विलास है, बुद्धि विलास है, बस परिवर्तन नहीं आएगा। और आएगा भी तो अल्पकाल का, ऊपर ऊपर से। किसी को माइग्रेन था, बहुत सारा अभ्यास किया ज्ञान योग का, समान ये वो, माइग्रेन चला गया, अभी कुछ दिनों के बाद फिर आ गया वो। तब अनुभव भी सुनाया, स्टेज पर अनुभव सुनाया, माइक पर वीडियो भी पोस्ट किया अपना कि हमको वो ये अभ्यास किया तो हमारी बीमारी मुक्त हो गई, बीमारी से मुक्त हो गई। अभी 6 महीने के बाद वापस आ गए, बीमारी फिर आ गई, क्योंकि वो तो चेंज होते रहता है ना मन, उसके साथ ये भी चेंज हो गया। इसलिए परमानेंट चेंज अगर चाहिए तो वो होगा केवल और केवल आहार परिवर्तन से, क्योंकि आहार ही हमारे अंदर मन बनता है। तो तीसरा, पहला अहिंसा, दूसरा प्रकृति के साथ जाना, तीसरा चूज करना, और चौथा डिसाइड करना कि मुझे अब निर्णय करना है, मुझे करना क्या है। धर दीनी चदरिया, ये मैली देनी है या फिर उसको स्वच्छ करके देना है, जैसी कि वैसी देनी है या स्वच्छ करके देना है या मैला करके देना है। पर जैसी कि वैसी देना ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि पूरे दिन भर में मैली होती रहती है ये चदरिया, इतना आसान नहीं है। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, चदरिया जीनी रे जीनी, राम रस भर दीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। जब मोरी चदर बन घर आई, रंगरेस को दीनी ऐसा रंग रंगी रंगरे ने, कि लाली लाल कर दीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि त्यो धर दीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। कुछ बातें, 3 बातें और हैं, वो कल देखेंगे। शांति।
माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा कबीर, कह गए दास कबीर, चदरिया जीनी रे जीनी। जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया, चादर जीनी हो राम जीनी, चादर जीनी हो राम जीनी, ये तो राम रंग भीनी, जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया, जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया। Thank you. अष्ट कमल का चरखा बनया पंच तत्व की पूनी, नौ दस माह बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। अष्ट कमल का चरखा बनया पंच तत्व की पूनी, नौ दस माह बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। जब मोरी चादर बन घर को आई, जब मोरी चादर बन घर को आई, रंगरेज को दिनी ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालो लाल कर दिनी, लालो लाल कर दिनी। जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया संकमत करियो दो दिन तुमको दीनी, मूरख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी। चादर ओढ़ संकमत करियो दो दिन तुमको दीनी, मूरख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी
दरिया। जीनी रे जीनी रे जीनी रे जीनी।